मेरा तीसरा चैप्टर है जैन दर्शन, विषय प्रवेश। जैनों के अनुसार जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थकर थे। अत्यंत प्राचीन काल से ही इन तीर्थकरों की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। ऋषभदेव इस परंपरा के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। वर्धमान या महावीर इसके 24वें या अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म ईसा से पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध से कुछ वर्ष पहले हुआ था। वर्धमान से पूर्व अर्थात 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका समय ईसा से लगभग 900 वर्ष पूर्व माना जाता है। अन्य 22 तीर्थकर प्रागैतिहासिक युग के हैं। तीर्थकरों को जिन भी कहते हैं, जिन शब्द का अर्थ विजेता या जीतने वाला है। तीर्थकरों को जिन नाम दिया गया है कि इन्होंने अर्थ विजेता या जीतने वाला है। तीर्थकरों को जिन नाम इसलिए दिया गया है कि इन्होंने राग द्वेष को जीतकर निर्वाण प्राप्त किया है। जैन ईश्वर को नहीं मानते। वे तीर्थकरों अर्थात जैन मत के प्रवर्तकों की ही उपासना करते हैं। तीर्थकर मुक्त होते हैं। मोक्ष पाने के पूर्व ये भी बंधन में थे, किंतु साधना के द्वारा ये मुक्त, सिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा आनंदमय हो गए हैं। जैनों का यह विश्वास है कि बंधन ग्रस्त सभी जीव जिनों के दिखलाए मार्ग पर चल सकते हैं और उनकी तरह पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति तथा पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैन मत का यह आशावाद प्रत्येक जैन में आत्मविश्वास का संचार करता है। तीर्थकरों के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रत्येक जीव अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अतः जैन इसे कल्पना मात्र नहीं समझते हैं। कालांतर में जैनों के दो संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर तथा दिगंबर। इन संप्रदाय में मूल सिद्धांतों का भेद नहीं है, बल्कि भेद आचार विचार संबंधी कुछ गौण बातों को लेकर है। दोनों ही संप्रदायों के लोग तीर्थकरों के उपदेशों को अवश्य मानते हैं, किंतु श्वेतांबर की अपेक्षा दिगंबर में अधिक कट्टरता पाई जाती है। यहाँ तक कि दिगंबर सन्यासी वस्त्रों का भी व्यवहार नहीं करते, किंतु श्वेतांबर सन्यासी वस्त्रों का व्यवहार करते हैं। दिगंबरों के अनुसार तो पूर्ण ज्ञानी महात्माओं को भी भोजन की आवश्यकता नहीं है। वे ये कहते हैं कि स्त्रियां जब तक पुरुष रूप में जन्म ग्रहण न करें तब तक वे मुक्ति नहीं पा सकती, किंतु श्वेतांबर इन विचारों को नहीं मानते हैं। जैन दर्शन का साहित्य अत्यंत समृद्ध है, यह अधिकांशतः प्राकृत पे है। जैन मत के मौलिक सिद्धांत ग्रंथों को सभी संप्रदायों के लोग मानते हैं। कहा जाता है कि इन सिद्धांतों के उपदेष्टा 24वें तीर्थकर महावीर हैं। प्राचीन जैन साहित्य अधिकांशतः प्राकृत भाषा में है। आगे चलकर अन्य दर्शनों ने जब जैन मत की आलोचना की तो जैनों ने अपने मत संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा को अपनाया। इस प्रकार संस्कृत में भी जैन साहित्य का विकास हुआ। प्राचीनतम जैन धर्म ग्रंथों में चतुर्दश पूर्व और एकादश अंग गिनाए जाते हैं, लेकिन पूर्व ग्रंथ अभी भी लुप्त हो गए हैं। उनके बाद क्रमशः उपांग, प्रकीर्ण, सूत्र इत्यादि नाना श्रेणी के ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत में नेमि उमा स्वामी का तत्वाधिगम सूत्र, सिद्ध सेन दिवाकर का न्यायावतार, नेमिचंद्र का द्रव्य संग्रह, मल्लिसेन की स्वादवाद मंजरी, प्रभाचंद्र का प्रमेय कमलमान्तरण आदि प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ हैं। जैन मत दार्शनिक दृष्टि से वस्तुवादी तथा बहुसत्तावादी है। इसके अनुसार जितने द्रव्यों को हम देखते हैं सभी सत्य हैं। संसार में दो तरह के द्रव्य हैं, जीव और अजीव। प्रत्येक सजीव द्रव्य में, चाहे उसका शरीर किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, जीव अवश्य रहता है। इसलिए जैन अहिंसा सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देते हैं। अन्य मतों के प्रति जैनों का समादर भाव है। इसका कारण जैन मत का अनेकांतवाद तथा स्यादवाद है। अनेकांतवाद के अनुसार भी वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। स्यादवाद के अनुसार कोई भी विचार निरपेक्ष सत्य नहीं होता। एक ही वस्तु के संबंध में दृष्टि, अवस्था आदि भेदों के कारण भिन्न भिन्न विचार सत्य हो सकते हैं। हम यहाँ जैन दर्शन के प्रमाण, मूल तत्व तथा धर्म और विचार संबंधी विषयों का पृथक पृथक विवेचन करेंगे। प्रमाण विचार। पहला, ज्ञान और उसके भेद। जैन के अनुसार चैतन्य ही प्रत्येक जीव का स्वरूप है। चार्वाक की तरह वे यह नहीं मानते कि चैतन्य कोई आकस्मिक गुण है। जैन दर्शन में जीव या आत्मा की उपमा सूर्य के साथ दी गई है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा व चैतन्य अपने को तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। अतः जैनों ने कहा है, ज्ञानम स्वपरभासी। जिस तरह सूर्य किसी आवरण के कारण प्रकाश नहीं दे सकता, उसी तरह आत्मा भी बंधन में पड़कर अनंत ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकती। जब बंधन का नाश हो जाता है, तब आत्मा अनंत ज्ञान में हो जाती है। अनंत ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव में है, किंतु बाधाओं के रहने से जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अर्थात बंधन के कारण सभी जीवों का ज्ञान न्यून तथा सीमित हो जाता है। ज्ञान की परिमितता जैनों के अनुसार कर्म जनित बाधाओं के कारण होती है। इन बाधाओं के कारण ज्ञान में न्यूनता आ जाती है। इस तरह जीव की सर्वज्ञता नष्ट हो जाती है। शरीर, इंद्रिय और मन कर्मों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इनके वर्तमान रहने से आत्मा की स्वाभाविक शक्ति परिमित हो जाती है। अन्य दार्शनिकों की तरह जैन भी ज्ञान के दो भेद मानते हैं, अपरोक्ष ज्ञान तथा परोक्ष ज्ञान। किंतु ये यह भी कह सकते हैं कि जो ज्ञान साधारणतया अपरोक्ष माना जाता है, वह केवल अपेक्षाकृत अपरोक्ष है। इंद्रिय या मन के द्वारा जो बाह्य एवं आभ्यंतर विषयों का ज्ञान होता है, वह अनुमान की अपेक्षा अवश्य अपरोक्ष होता है, किंतु ऐसे ज्ञान को पूर्णतया अपरोक्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह भी इंद्रिय या मन के द्वारा होता है। इस व्यावहारिक अपरोक्ष ज्ञान के अतिरिक्त पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान भी हो सकता है। इसकी प्राप्ति कर्म बंधन के नष्ट होने पर ही होती है। पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान में आत्मा और ज्ञेय वस्तुओं का साक्षात संबंध यानी इंद्रियादि की सहायता के बिना ही हो जाता है। जब तक कर्मजनित बाधाएं रहती हैं, तब तक कर्म जनित बाधाएं रहती हैं, तब तक ऐसा ज्ञान संभव नहीं होता है। सब कर्मों का नाश हो जाने पर ये बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं और ऐसा ज्ञान संभव होता है। पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान के तीन भेद किए गए हैं। पहला, अवधि, मन पर्याय तथा केवल। अवधि ज्ञान, जब मनुष्य अपने कर्म को अंशतः नष्ट कर लेता है, तो वह एक ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जिसके द्वारा वह अत्यंत दूरस्थ सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों को भी जान सकता है। इसके द्वारा सीमित वस्तुओं का ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। अतः ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। दूसरा, मन पर्याय, जब मनुष्य राग द्वेष आदि मानसिक बाधाओं पर विजय पाता है, तब अन्य व्यक्तियों के वर्तमान तथा भूत विचारों को जान सकता है। ऐसे ज्ञान को मनः पर्याय कहते हैं, क्योंकि इससे दूसरों के मन में प्रवेश हो सकता है। तीसरा, केवल ज्ञान, जब ज्ञान के बाधक सब कर्म आत्मा से पूर्णतया दूर हो जाते हैं, तब अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। इसे केवल ज्ञान कहते हैं। यह मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। यही तीन प्रकार के अलौकिक ज्ञान हैं जो पूर्ण रूप से अपरोक्ष हैं। इनके अतिरिक्त दो प्रकार के लौकिक ज्ञान हैं जो सर्वसाधारण में पाए जाते हैं। इन्हें मति और श्रुत कहते हैं। इनके अर्थ के संबंध में जैन विद्वानों में मतभेद है, किंतु साधारणतः मति ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार मति के अंतर्गत व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान तथा आंतर अर्थात प्रत्यक्ष स्मृति, प्रतिभिज्ञा, अनुमान सभी आ जाते हैं। शुद्ध शब्द ज्ञान को कहते हैं। जैनों के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति निम्नलिखित क्रम से होती है। सबसे पहले इंद्रिय संवेदन होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई ध्वनि सुनता है, प्रारंभ में यह नहीं ज्ञात होता कि यह ध्वनि किसकी है। इस अवस्था को अवग्रह कहते हैं। अवग्रह में केवल विषय का ग्रहण होता है। तब मन में एक प्रश्न उठता है कि यह ध्वनि किस वस्तु की है। इस अवस्था को इहा कहते हैं। इसके बाद एक निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि यह ध्वनि अमुक वस्तु की है। इसे आवाय कहते हैं। आवाय का अर्थ निश्चय है। इस तरह जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका मन में धारण होता है, इसको धारण कहते हैं। दूसरा लौकिक ज्ञान शुद्ध है। ज्ञान की उत्पत्ति सुने हुए शब्दों से होती है। यह आप्त वचनों तथा प्रामाणिक ग्रंथों से संभव होता है। आप्त वचन को सुने बिना तथा प्रामाणिक ग्रंथों को देखे बिना शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इसके लिए इंद्रिय ज्ञान का होना आवश्यक है। अतः मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से पहले ही आता है। सर्वज्ञ तीर्थकरों के उपदेश सर्वश्रेष्ठ श्रुत ज्ञान है। जैन दर्शन के अनुसार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तथा अवधि ज्ञान में दोष की संभावना रह जाती है, किंतु मन पर्याय ज्ञान तथा केवल ज्ञान सर्वथा दोष रहित होते हैं। साधारणतः जैन दर्शन भी अन्य दर्शनों के भांति तीन ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। दूसरा टॉपिक है चार्वाक मत का खंडन। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। जैसे दार्शनिक इस मत का खंडन कर अनुमान तथा शब्द जैसे अप्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों के लिए युक्ति देते हैं। यदि चार्वाक से यह प्रश्न किया जाए कि केवल प्रत्यक्ष को ही क्यों प्रमाण माना जाए, तब या तो वे मौन रहेंगे या उत्तर देंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वथा मान्य है क्योंकि यह दोष रहित है। यदि वे मौन रहते हैं तब तो यह स्पष्ट है कि उनके मत के लिए युक्ति नहीं है। यदि वे अपने इस मत की पुष्टि के लिए कोई युक्ति देते हैं तब वे स्वयं अनुमान की सहायता लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के समर्थन के लिए उनकी यह युक्ति कि यह निर्विवाद तथा दोष रहित होता है अनुमान तथा शब्द पर भी लागू हो सकती है। इस तरह अनुमान तथा शब्द भी स्वीकार योग्य हो जाते हैं। चार्वाक कह सकते हैं कि अनुमान और शब्द कभी कभी दोषयुक्त भी होते हैं। तो क्या प्रत्यक्ष भी कभी कभी दोषयुक्त या भ्रमात्मक नहीं होता? इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द को भी प्रमाण मानना चाहिए, जब उससे बिल्कुल दोष रहित ज्ञान प्राप्त हो सके। ज्ञान का उसके व्यवहारिक परिणामों के साथ सामंजस्य अर्थात संवाद होना ही उसकी प्रामाणिकता है। चार्वाक परलोक जैसे अप्रत्यक्ष विषयों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। यहाँ वे स्वयं प्रत्यक्ष की सीमा के बाहर चले जाते हैं। वस्तुओं को नहीं देखते के कारण वे उनके अभाव का अनुमान करते हैं। फिर जब वे यह कहते हैं कि सभी प्रत्यक्ष प्रमाणिक हैं, तो वे अनुमान की ही सहायता लेते हैं, क्योंकि यहाँ अतीत के प्रमाणिक प्रत्यक्षों के आधार पर ही भविष्य के प्रत्यक्षों के संबंध में अनुमान किया जाता है। जब चार्वाक अपने विपक्षियों से तर्क करते हैं तो उस समय भी वे विपक्षियों के शब्दों से उनके विचारों का अनुमान लगाते हैं, अन्यथा वे किसी वाद विवाद में भाग नहीं ले सकते। इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अतः यह मत युक्तिसंगत नहीं। तीसरा टॉपिक है जैनों का परामर्श संबंधी मत। क स्यादवाद। वस्तुओं के संबंध में हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के अपरोक्ष तथा परोक्ष ज्ञान हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि उनसे अनेक धर्म होते हैं। जैन दार्शनिक कहते हैं अनंत धर्म कम वस्तु, केवली केवल ज्ञान के द्वारा वस्तुओं के अनंत धर्मों का अपरोक्ष ज्ञान पाता है। किंतु साधारण मनुष्य किसी वस्तु को किसी समय एक ही दृष्टि से देख सकता है, इसलिए वह उस वस्तु का एक ही धर्म जान सकता है। वस्तुओं के इस आंशिक ज्ञान को जैन दार्शनिक नय कहते हैं। इस आंशिक ज्ञान के आधार पर जो परामर्श होता है उसे भी नय कहते हैं। किसी भी विषय के संबंध में जो हमारा परामर्श होता है वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, उसकी सत्यता उसके न्याय पर निर्भर करती है। अर्थात जिस दृष्टि तथा जिस विचार से किसी विषय का परामर्श होता है उसकी सत्यता उसी दृष्टि तथा उसी विचार पर निर्भर करती है। हमारे मतभेद का कारण यह है कि हम उपयुक्त सिद्धांत को भूल जाते हैं और अपने विचारों को सर्वथा सत्य मानने लगते हैं। मान लीजिए कुछ अंधे हाथी का आकार जानना चाहते हैं, कोई उसका पैर, कोई कान, कोई पूंछ तथा कोई उसकी सूंड पकड़ता है। इसका फल यह होता है कि उन अंधों में हाथी के आकार के संबंध में पूरा मतभेद हो जाता है। प्रत्येक अंधा सोचता है कि उसी का ज्ञान ठीक है। जैसे ही उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि प्रत्येक ने हाथी का एक एक अंग ही स्पर्श किया है, उनका मतभेद दूर हो जाता है। दार्शनिकों के बीच भी मतभेद इसीलिए होता है कि किसी विषय को भिन्न भिन्न दृष्टियों से वे आंकते हैं। दृष्टि साम्य होने पर मतभेद की संभावना नहीं रह जाती। भिन्न भिन्न दर्शनों में संसार के भिन्न भिन्न वर्णन पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें एक दृष्टि नहीं है। दृष्टि भेद के कारण ही इनमें मतभेद पाया जाता है। किंतु कोई भी दर्शन यह नहीं सोचता कि उनका मत किसी दृष्टि विशेष पर ही निर्भर करता है। हो सकता है कि अन्य दृष्टि से उसका मत युक्तिसंगत न हो। ऊपर जो हाथी और अंधे का दृष्टांत दिया गया है उसमें प्रत्येक अंधे का हाथी संबंधी ज्ञान उसके अपने ढंग से बिल्कुल ठीक है। उसी तरह भिन्न भिन्न दार्शनिक मत अपनी अपनी दृष्टि से सत्य हो सकते हैं। अतः जैन इस बात का आग्रह करते हैं कि प्रत्येक नए के प्रारंभ में स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्यात् शब्द से यह संकेत होता है कि उसके साथ के प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर ही निर्भर करती है। अन्य प्रसंगों में वह मिथ्या भी हो सकता है। ऊपर के उदाहरण में यह कहना ठीक नहीं है कि हाथी एक स्तंभ के आकार का होता है, किंतु हम कह सकते हैं कि स्यात् हाथी का आकार स्तंभ के समान होता है। दूसरी उक्ति में स्यात् शब्द से यह बोध होता है कि किसी विशेष दृष्टि से अर्थात पैरों के संबंध में हाथी का आकार स्तंभ के समान है। इस तरह हम देखते हैं कि विचार को दोषमुक्त करने के लिए स्यात् का प्रयोग नितांत आवश्यक है। घर के भीतर किसी काले रंग के घड़े को देखकर हमें यह नहीं कहना चाहिए कि घड़ा है, बल्कि यह कहना चाहिए कि स्यात् खड़ा है। स्यात् से इस बात का ज्ञान होगा कि घड़े का अस्तित्व काल विशेष, स्थान विशेष तथा गुण विशेष के अनुसार है। स्यात् शब्द से यह भ्रम नहीं होगा कि घड़ा नित्य है तथा सर्वव्यापी है। साथ साथ हमें यह भी संकेत मिलेगा कि किसी विशेष रंग और रूप का घड़ा किसी विशेष काल और स्थान में है। घड़ा है केवल यदि यही कहें तो उससे अनेक प्रकार का भ्रांत ज्ञान हो सकता है। जैनों का यह मत स्यादवाद कहलाता है। स्यादवाद का सार अर्थ यही है। साधारण बुद्धि वाला मनुष्य किसी विषय में जो भी परामर्श करता है वह एक देशीय होता है, अर्थात उस परामर्श की सत्यता उसी प्रसंग के अनुसार होती है जिसके साथ उसकी कल्पना हुई रहती है। कुछ पाश्चात्य तार्किकों के विचारों के साथ भी स्यादवाद की बड़ी समानता है। ये तार्किक भी कहते हैं कि प्रत्येक विचार का अपना अपना प्रसंग या प्रकरण होता है, उसे हम विचार प्रसंग कह सकते हैं। विचारों की सार्थकता उनके विचार प्रसंगों पर निर्भर होती है। विचार प्रसंग में स्थान, काल, दशा, गुण आदि अनेक बातें सम्मिलित रहती हैं। विचार परामर्श के लिए इन बातों को स्पष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। साथ साथ उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक का स्पष्टीकरण संभव भी नहीं है। शीलर आदि कुछ आधुनिक तार्किक ऐसे विचार से सहमत होंगे। अतः हम देखते हैं कि विचारों को दोष रहित बनाने के लिए उनके पहले स्यात् शब्द का जोड़ना परम आवश्यक है। स्यादवाद सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जैनों की दृष्टि कितनी उदार है। जैन अन्यान्य दार्शनिक विचारों को नगण्य नहीं समझते, बल्कि अन्य दृष्टियों से उन्हें भी सत्य मानते हैं। किसी दर्शन की इस हठोक्ति को नहीं मानते कि केवल उसी के विचार सत्य हैं। ऐसी हठोक्तियों में एकांतवाद का दोष रहता है। इधर हाल में अमेरिका के नववस्तुवादियों ने इस एकांतवाद का घोर विरोध किया है, किंतु इस दोष से मुक्त होने की जैसी युक्ति जैनों ने निकाली है वैसे किसी भी अन्य प्राच्य या पाश्चात्य दार्शनिकों ने नहीं। ख सप्तभंगी न। पाश्चात्य तर्क विज्ञान में परामर्शों के साधारणतः दो भेद किए जाते हैं, एक अस्तिवाचक और दूसरा नास्तिवाचक, किंतु जैन सात प्रकार के भेद मानते हैं। उपयुक्त दो भेद भी इनके अंतर्गत हैं। जिस परामर्श में किसी उद्देश्य वस्तु के साथ उसके किसी धर्म या लक्षण का संबंध जोड़ा जाता है उसे अस्तिवाचक परामर्श कहते हैं, और जिस परामर्श में उद्देश्य वस्तु का किसी अन्य वस्तु के धर्म या लक्षण के साथ संबंध भाव दिखलाया जाता है उसे नास्तिवाचक परामर्श कहते हैं। परामर्श को जैन दार्शनिक नए भी कहते हैं। जैन तार्किक प्रत्येक नए के साथ स्यात् शब्द को जोड़ते हैं। स्यात् शब्द को जोड़कर यह दिखलाना चाहते हैं कि कोई भी नए एकांत या निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है बल्कि आपेक्षिक है। घड़े के संबंध में अस्तिवाचक नय इस प्रकार का होना चाहिए, स्यात् घटः अस्ति, अर्थात स्यात् घड़ा है। स्यात् से घड़े के स्थान, काल, रंग आदि का संकेत होता है। स्यात् घड़ा लाल है, इससे यह बोध होता है कि घड़ा सब समय के लिए लाल नहीं है बल्कि किसी विशेष समय में या विशेष परिस्थिति में लाल है। यह भी बोध होता है कि इसका लाल रंग एक विशेष प्रकार का है। जैनों के अनुसार अस्थि बोधक परामर्शों का सामान्य रूप से स्यात् अस्थि है। घड़े के संबंध में नास्ति बोधक परामर्श इस प्रकार का होना चाहिए, स्यात् घड़ा इस कोठरी के अंदर नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोठरी के अंदर कोई भी घड़ा नहीं है या नहीं रह सकता। स्यात् शब्द इस बात का द्योतक है कि जिस घड़े के संबंध में परामर्श हुआ है वह घड़ा कोठरी के अंदर नहीं है, अर्थात एक विशेष रंग रूप का घड़ा विशेष समय में कोठरी के अंदर मौजूद नहीं है। स्यात् शब्द का प्रयोग यदि नहीं किया जाए तो किसी भी घड़े का बोध हो सकता है। दूसरा दृष्टांत है, स्यात् घड़ा काला नहीं है, अर्थात कोई एक विशेष घड़ा विशेष स्थान, समय तथा परिस्थिति में काला नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि नास्ति बोधक परामर्शों में भी स्यात् शब्द का प्रयोग आवश्यक है। इन परामर्शों का सामान्य रूप स्यात् नास्ति यानी स्यात् नहीं है हो सकता है। घड़ा कभी लाल हो सकता है तथा कभी दूसरे रंग का भी हो सकता है। इसे व्यक्त करने के लिए मिश्र वाक्य या संयुक्त परामर्श की सहायता लेनी चाहिए, जैसे घड़ा लाल है तथा नहीं भी लाल है। इसका सामान्य रूप स्यात् अस्ति च नास्ति च, अर्थात स्यात् है तथा नहीं भी है होगा। जैन तार्किकों के अनुसार यह तीसरे प्रकार का नय या परामर्श है। इसमें किसी वस्तु के अस्तित्व तथा नास्तित्व के संबंध में एक साथ ही बोध होता है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार करने के लिए यह प्रकार भेद आवश्यक है। घड़ा जब अच्छी तरह से नहीं पकता है तो कुछ काला रह जाता है, जब पूरा पक जाता है तो लाल हो जाता है। यदि यह पूछा जाए कि घड़े का रंग सभी समय में तथा सभी अवस्थाओं में क्या है तो इसका एकमात्र सही उत्तर यही हो सकता है कि इस दृष्टि से घड़े के रंग के संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अतः जिस परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में युगपत यानी एक साथ विचार करना हो तो उसका यथार्थ रूप स्यात् अव्यक्तम होना चाहिए। जैन तर्ककार इसे परामर्श का चौथा भेद मानते हैं। दार्शनिक दृष्टि से परामर्श का चौथा रूप बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, सबसे पहले तो इससे यह बोध होता है कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं या दृष्टियों के अनुसार ही किसी वस्तु का चाहे पृथक पृथक या क्रमिक वर्णन हो सकता है। इस प्रकार पृथक पृथक या क्रमिक वर्णन नहीं करके यदि परस्पर विरोधी धर्मों के द्वारा किसी वस्तु का हम युगपत वर्णन नहीं करना चाहें तो प्रयत्न सफल नहीं होता और हमें बाध्य होकर कहना पड़ता है वह वस्तु इस दृष्टि से अवक्तव्य है। दूसरी बात यह है कि जब समय किसी प्रश्न का सीधा अस्तिसूचक या नास्तिसूचक उत्तर दे देने में ही बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमान लोगों के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। तीसरा यह है कि जैन तार्किक विरोध को एक दोष मानते हैं, अर्थात वे समझते हैं कि परस्पर विरोधी धर्म एक साथ किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते। सप्तभंगी नय के शेष तीन नय निम्नलिखित ढंग से प्राप्त होते हैं। पहले, दूसरे तथा तीसरे नयों के बाद अलग अलग चौथे नय को जोड़ देने से क्रमशः पांचवा, छठा तथा सातवां नय बन जाते हैं, अर्थात पहले और चौथे नयों को क्रमिक रूप से जोड़ने से पांचवा नय बनता है। जैसे सात अस्थि च अव्यक्तम च, अर्थात सात है और अव्यक्त भी है। किसी विशेष दृष्टि से हम घड़े को लाल कह सकते हैं, किंतु जब दृष्टि का स्पष्ट निर्देशन न हो तो घड़े के रंग का वर्णन असंभव हो जाता है। अतः व्यापक दृष्टि से घड़ा लाल है और अव्यक्त भी है, यही पांचवा नय है। दूसरे और चौथे नयों को क्रमिक रूप से जोड़ने से छठा नय बनता है। यह स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, अर्थात स्यात् नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। इसी तरह तीसरे और चौथे नयों को क्रमानुसार जोड़ देने से सातवां नय बन जाता है। यह स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च हो जाता है, अर्थात स्यात् है, नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। यहाँ एक बात का स्मरण रखना नितांत आवश्यक है। पहले, दूसरे या तीसरे नयों के बाद जो चौथा नय जोड़ा जाता है, यह क्रमिक रूप से लेना यानी क्रमार्पण है, युगपत लेना यानी सहार्पण नहीं है। इन विरुद्ध नयों को युगपत यानी एक साथ लेने से प्रत्येक बार चौथा नय अर्थात अवक्तव्य पुनः पुनः आ जाता है, किंतु क्रमिक रूप लेने पर तीन नए नए हो जाते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होने पर भी नयों के साथ ही भेद हो सकते हैं। उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, ये सात भेद हैं। पहला स्यात् है अर्थात स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नहीं है यानी स्यात् नास्ति, तीसरा स्यात् है और नहीं भी है यानी स्यात् अस्ति च नास्ति च, चौथा स्यात् अव्यक्तव्य है स्यात् अव्यक्तव्यम, पांचवा स्यात् है और अव्यक्तव्य है स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम च, छठा स्यात् नहीं है और अव्यक्तव्य भी है स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम च, सातवां स्यात् है, नहीं है, अव्यक्त भी है यानी स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च। पाश्चात्य दार्शनिकों के व्यवहारवाद के साथ जैनों के स्यादवाद की कभी कभी तुलना की जाती है। यह सत्य है कि शीलर जैसे व्यवहारवादी मानते हैं कि यदि प्रसंग और उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा जाए तो कोई भी परामर्श सत्य या झूठ सिद्ध नहीं हो सकता। वर्ग वृत्त नहीं है, दो और दो चार होता है, इस प्रकार के असंदिग्ध वाक्य भी सीलर के अनुसार एक विशेष दृष्टि से ही सत्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनों में और व्यवहारवादियों में अवश्य ही समानता वर्तमान है, किंतु दोनों में बहुत बड़ा विभेद भी है। जैन वस्तुवादी हैं, लेकिन क्रियावादियों का झुकाव विज्ञानवाद की ओर है। जैन यह नहीं मानते कि हमारे विचार परामर्श मानसिक प्रत्यय मात्र हैं, बल्कि उनके अनुसार तो विचार या परामर्श के द्वारा बाह्य वस्तुओं के वास्तविक धर्मों को जाना जाता है। अतः उनके अनुसार कोई प्रत्यय तभी सत्य हो सकता है जब वह बाह्य वस्तु के धर्म को व्यक्त करे, किंतु पक्के व्यवहारवादी इस विचार को नहीं मानते। जैन स्यादवाद की तुलना कभी कभी पाश्चात्य सापेक्षवाद यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी की जाती है। सापेक्षवाद दो प्रकार का होता है, विज्ञानवादी और वस्तुवादी। विज्ञानवादी सापेक्षवाद के प्रवर्तक प्रोटागोरस, वर्कले तथा शीलर आदि हैं। वस्तुवादी सापेक्षवाद के प्रवर्तक व्हाइटहेड, बुडिन आदि हैं। जैन मत को यदि सापेक्षवाद माना जाए तो वह वस्तुवादी सापेक्षवाद होगा। क्योंकि जैन दार्शनिक मानते हैं कि यद्यपि ज्ञान सापेक्ष है, फिर भी यह केवल मन पर निर्भर नहीं है, बल्कि वस्तुओं के धर्मों पर भी निर्भर है। स्यादवादी होने के कारण जैन मत के संबंध में एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। इसे कुछ लोग संशयवाद या अज्ञेयवाद मानते हैं। इसकी तुलना ग्रीक दार्शनिक पीरो के संशयवाद से की जाती है, क्योंकि पीरो के अनुसार भी वाक्यों के पहले शायद यानी मे बी का प्रयोग आवश्यक समझा जाता था, किंतु यथार्थ में जैन संशयवादी नहीं है। स्यात शब्द के प्रयोग से किसी वाक्य से उसकी असत्यता या संदिग्धता का बोध नहीं कराया जाता है, बल्कि उसकी सापेक्षता का संकेत किया जाता है। परिस्थिति तथा विचार प्रसंग के अनुसार परामर्श अवश्य ही सत्य होता है। इसे दार्शनिक स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। अतः स्यादवाद को संशयवाद समझना ठीक नहीं है। तीसरा टॉपिक है तत्व विचार। जैनों के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। उन्होंने कहा है कि अनंत धर्म कम वस्तु। इसका तात्पर्य क्या है, इसे समझना आवश्यक है। प्रत्येक वस्तु के दो प्रकार के धर्म होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो उस वस्तु के अपने रूप, स्थिति आदि का परिचायक हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसका अन्य वस्तुओं के साथ पार्थक्य सूचित करते हैं। पहले प्रकार के धर्म भावात्मक हैं, जिन्हें जैन दार्शनिक स्वपर्याय कहते हैं, और दूसरे अभावात्मक हैं, जिन्हें परपर्याय कहते हैं। उदाहरण, हम किसी मनुष्य को ले सकते हैं। उसके आकार, रंग, रूप, गोत्र, कुल, जाति, व्यवसाय, जन्म स्थान, जन्मतिथि, वास स्थान, आयु आदि प्रथम प्रकार के धर्म हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अभावात्मक धर्म भी उस मनुष्य में हैं जो अन्य वस्तुओं से उसका भेद सूचित करते हैं। हमें यदि उस मनुष्य के संबंध में पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें जानना होगा कि वह अन्य सभी वस्तुओं से किस प्रकार भिन्न है। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के संबंध में हमें जानना पड़े कि वह यूरोपियन, चीनी, निग्रो, ईसाई, मुसलमान, पारसी, मूर्ख, धूर्त, स्वार्थी आदि नहीं है। अभावात्मक धर्मों की संख्या भावात्मक धर्मों से बहुत अधिक है, क्योंकि अन्य सभी वस्तुओं से जो भेद होते हैं, वे ही अभावात्मक धर्म कहे जाते हैं। इसी तरह यदि किसी वस्तु का विचार उसके भावात्मक तथा अभावात्मक धर्मों के अनुसार हो, तो इससे यह स्पष्ट है कि वह कोई साधारण पदार्थ नहीं है, बल्कि अनंत है। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि विशेषतः अभावात्मक धर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन धर्मों के साथ साथ यदि काल का भी विचार किया जाए, तब तो उसकी अनंतता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कार्य कर्म के अनुसार तो उसके धर्मों में परिवर्तन होता रहता है और उसमें नए नए धर्मों की उत्पत्ति होती रहती है। अतः अनंत धर्म कम वस्तु, यह उक्ति बिल्कुल समचीन है। अतः जैन दार्शनिक कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी एक वस्तु को अर्थात सभी दृष्टियों से जानता है, तो वह सभी वस्तुओं को जान लेता है। सिर्फ केवली या सर्वज्ञ पुरुष ही किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। व्यवहार के लिए तो वस्तु का आंशिक ज्ञान भी पर्याप्त होता है, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि किसी छोटी चीज के भी धर्म थोड़े से हैं और लौकिक ज्ञान द्वारा ही वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तत्व विचार के अंतर्गत पहला टॉपिक है द्रव्य विचार। हम ऊपर कह आए हैं कि वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं। धर्म किसी धर्मों का होता है। साधारण वार्तालाप तथा दार्शनिक विचार विमर्श में भी धर्म और धर्मी का भेद किया जाता है। जिसका धर्म होता है उसे धर्मी कहते हैं, और धर्मी में जो लक्षण पाए जाते हैं उसे धर्म कहते हैं। धर्मी के लिए दूसरा नाम द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य के दो प्रकार के धर्म होते हैं, स्वरूप या नित्य धर्म तथा आगंतुक या परिवर्तनशील धर्म। स्वरूप धर्म वे हैं जो द्रव्य में सदा वर्तमान रहते हैं। ऐसे धर्मों के बिना द्रव्य का अस्तित्व ही असंभव है। उदाहरणार्थ चैतन्य आत्मा का स्वरूप धर्म है। आगंतुक धर्म द्रव्य में सर्वदा वर्तमान नहीं रहते हैं। वे आते जाते रहते हैं। इच्छा, संकल्प, सुख, दुख, ये आत्मा के परिवर्तनशील धर्म है। इन्हीं धर्मों से द्रव्य का परिवर्तन होता है। जैन दार्शनिक स्वरूप धर्मों को गुण कहते हैं तथा आगंतुकी धर्मों को पर्याय कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील तथा पर्याय परिवर्तनशील होते हैं। इन विचारों के अनुसार द्रव्य की परिभाषा संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है कि द्रव्य वह है जिसमें गुण तथा पर्याय हो। यह संसार भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों से संयोग बना है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि द्रव्यों के गुण परिवर्तनशील नहीं होते हैं, अतः इस दृष्टि से संसार नित्य है किंतु उनके पर्याय बदलते रहते हैं। अतः इस दृष्टि से संसार अनित्य तथा परिवर्तनशील है। इस तरह जैन संसार को एक दृष्टि से नित्य तथा दूसरी दृष्टि से अनित्य मानते हैं। इसलिए वे बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को एकांगिन या एकांतवाद समझते हैं। जैन अद्वैत वेदांत के नित्यवाद को भी एकांगिन या एकांतवाद समझते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन को माया समझता है और केवल ब्रह्म को ही सत्य एवं नित्य मानता है। इस तरह बौद्ध दर्शन तथा अद्वैत वेदांत दोनों में ही एकांतवाद का दोष पाया जाता है। यथार्थता, नित्यता तथा परिवर्तन दोनों ही सत्य हैं। हम यदि कहें कि संसार नित्य तथा परिवर्तनशील भी है तो इसमें कोई विरोध नहीं होगा। एक दृष्टि से संसार की नित्यता ठीक है किंतु दूसरी दृष्टि से इसका परिवर्तन भी ठीक है। स्यादवाद के कारण विरोध की संभावना नहीं रह जाती। द्रव्य सत है, उत्पत्ति, व्यय और द्रव्य यानी क्षय और नित्यता ये ही सत्ता के लक्षण हैं। द्रव्य अपने गुणों के कारण नित्य है क्योंकि गुण परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तनशील पर्यायों की उत्पत्ति तथा विनाश होने के कारण इसमें उत्पत्ति तथा विनाश भी है। इस तरह द्रव्य में सत्ता के तीनों लक्षण वर्तमान हैं। सत या सत्ता के संबंध में जैनों तथा बौद्धों में पूरा मतभेद है। बौद्धों के अनुसार सत्ता वही है जो अर्थ क्रियाकारी अर्थात किसी कार्य का साधक है। अर्थात कोई वस्तु तभी सत्य है यदि उससे कोई कार्य उत्पन्न होता हो। जैन इस मत को युक्तिसंगत नहीं मानते क्योंकि इसके अनुसार तो मिथ्या सर्प भी सत्य समझा जाएगा। सर्प के भ्रम से भी लोगों में डर की उत्पत्ति हो जाती है और वे दूर भाग जाते हैं। ऐसी ही दोषपूर्ण युक्तियों के द्वारा बौद्ध दार्शनिक क्षणिकवाद का प्रतिपादन करते हैं, अतः क्षणिकवाद कभी भी मान्य नहीं हो सकता। क्षणिकवाद के विरुद्ध जैन दार्शनिक निम्नलिखित उक्तियां देते हैं। पहला, यदि सभी पदार्थ क्षणिक हैं तब तो आत्मा भी क्षणिक है। ऐसी अवस्था में स्मृति, प्रतिभिज्ञा आदि संभव नहीं हो सकती है। साथ साथ यह भी बोध नहीं हो सकता है कि मैं भी कभी बच्चा था और आज बड़ा हो गया हूँ। दूसरा, निर्वाण का कोई अर्थ नहीं रहता है क्योंकि यदि कोई स्थायी जीव है ही नहीं तो फिर मोक्ष किसका हो सकता है। तीसरा, यदि जीव क्षण क्षण बदलता रहे तो वह किसी आदर्श की पूर्ति के लिए क्यों प्रयत्न करेगा, क्योंकि वह स्वयं तो प्रयत्न करेगा किंतु क्षण स्थायी होने के कारण उसका फल वह स्वयं नहीं भोग सकेगा बल्कि उसका भोगने वाला अन्य जीव होगा। इस तरह धर्म का प्रयत्न असंभव होगा। चौथा, फलतः धर्म व्यवस्था भी नहीं रह सकेगी। कहीं कृत प्रणाश होगा तो कहीं अकृताभ पगम होगा, अर्थात अपने कर्मों का फल तो नहीं मिल सकेगा और दूसरों के कर्मों का फल भोगना होगा। पांचवा, बौद्ध मत के अनुसार आत्मा कोई स्थायी सत्ता नहीं है बल्कि क्षण स्थायी मानसिक अवस्थाओं का एक क्रम है, किंतु क्षणिक अवस्थाओं के अस्तित्व मात्र से ही कोई क्रम नहीं बन सकता है। बिना सूत्र के केवल फूलों से माला नहीं बन सकती है। जब तक क्षणिक अवस्थाओं के अंतर्गत कोई स्थायी सत्ता न हो तब तक वे क्रमबद्ध भी नहीं हो सकती हैं। प्रत्यक्ष से या अनुमान से किसी भी ऐसी वस्तु का ज्ञान नहीं मिलता है जिसमें केवल परिवर्तन हो और स्थायित्व तो कुछ भी न रहे। दूसरा, द्रव्यों का प्रकार भेद। जैन दार्शनिक समस्त द्रव्यों को दो भागों में विभक्त करते हैं, अस्तिकाय तथा अनस्तिकाय। काल ही एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य है, से सभी द्रव्य अस्तिकाय हैं। इन द्रव्यों को अस्तिकाय इसीलिए कहा जाता है कि ये हैं, यानी अस्थि और काय या शरीर की भांति स्थान या आकाश में है। अस्थिकाय दो प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। जीव आत्मा का ही एक दूसरा नाम है। जीव फिर दो प्रकार के होते हैं, मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव वे हैं जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, अर्थात बंधन से मुक्त हो चुके हैं, तथा बद्ध जीव वे होते हैं जो अभी तक बंधन में है। बद्ध जीव फिर दो प्रकार के होते हैं, त्रस्त और स्थावर। तस जीव गतिमान या जंगम होते हैं और स्थावर गतिहीन होते हैं। स्थावर जीव का शरीर सबसे अपूर्ण है। स्थावर जीव क्षिति, जल, अग्नि, वायु या वनस्पति रूप शरीरों में रहते हैं। स्थावर जीव को केवल स्पर्शेंद्रिय होता है, अतः उसे केवल स्पर्श ज्ञान ही हो सकता है। बस जीवों में न्यूनाधिक विकास पाया जाता है। उनमें क्रमशः 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ सीप, घोंगा आदि को 2 इंद्रिय होते हैं। त्वचा तथा जिह्वा, पिपीलिका यानी चींटी आदि की 3 इंद्रियां होती हैं। त्वचा, जिह्वा तथा नासिका, मक्खी, मच्छर, भौरा आदि के 4 इंद्रिय होते हैं। त्वचा, जिह्वा, नासिका तथा चक्षु। उच्च पशुओं, पक्षियों तथा मनुष्यों की 5 इंद्रियां होती हैं, त्वचा, जिह्वा, नासिका, चक्षु तथा कर्ण। अस्थिकाय अजीव 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ऊपर जो द्रव्य का प्रकार भेद बतलाया गया है, उसका संक्षिप्त रूप पृष्ठ 72 में बताया गया है। तीसरा जीव चेतन द्रव्य को जीव या आत्मा कहते हैं। जीव में चैतन्य सब समय वर्तमान रहता है, किंतु भिन्न भिन्न जीवों में इसका स्वरूप तथा इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मात्रा भेद के अनुसार जीवों में एक तारतम्य है, जिसमें सिद्ध आत्माओं का स्थान सबसे ऊंचा है। सिद्ध वे हैं जो कर्मों पर विजय पा लेते हैं और पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। सबसे नीचे स्थान में ऐसे एकेंद्रीय जीव हैं जो क्षिति, जल, अग्नि, वायु या वनस्पति में वास करते हैं। यूं तो इन जीवों में चैतन्य का सर्वथा अभाव मालूम पड़ता है, लेकिन वस्तुतः इनमें भी स्पर्श ज्ञान वर्तमान रहता है। हाँ, यह ठीक है कि इनका ज्ञान या चैतन्य कर्म जनित बाधाओं के कारण अत्यंत सीमित एवं अस्पष्ट रहता है। जिन्हें 2 से 5 तक इंद्रियां होती हैं, उनका स्थान जीवों में मध्यम है, जैसे कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि। जीव ही ज्ञान प्राप्त करता है, वही कर्म भी करता है, सुख दुख भी वही भोगता है। जीव स्वयं प्रकाशमान है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। यह नित्य है, किंतु इसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। यह शरीर से भिन्न है, इसका अस्तित्व आत्मानुभूति से ही प्रमाणित हो जाता है। संचित कर्मों के कारण जन्म पुनर्जन्म के चक्र में पड़ने से अनेक शरीर धारण करना पड़ता है। जिस प्रकार कोई दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव भी संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। जीव की कोई मूर्ति नहीं होती, किंतु जिस प्रकार प्रकाश स्थानानुसार आकार एवं रूप धारण करता है, उसी प्रकार जीव का विस्तार भी शरीर के अनुसार होता है। इसी अर्थ में अमूर्त जीव को भी अस्थिकाय माना जाता है। जीव सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि इसकी व्यापकता शरीर तक ही सीमित है। इसे केवल शरीरांतर्गत विषयों का ही अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। चैतन्य शरीर के बाहर नहीं, वरन इसके अंदर ही रहता है। पाश्चात्य दर्शन की दृष्टि से शायद यह समझने में कठिनाई हो कि जीव को चैतन्य और विस्तार दोनों कैसे हो सकते हैं। डेकार्टे के अनुसार चैतन्य और विस्तार परस्पर विरोधी गुण हैं। वे कहते हैं कि विस्तार केवल जड़ द्रव्यों में और चैतन्य केवल आत्माओं में पाया जा सकता है। उनका ऐसा सोचने का कारण यह है कि उनके अनुसार आत्मा चेतन द्रव्य है और चेतना आकाशव्यापी या पुद्गलधारी नहीं हो सकती, किंतु जैन दार्शनिक आत्मा को जीव मानते हैं। सजीव शरीर के प्रत्येक भाग में हम देखते हैं कि चैतन्य या बोध है, अतः चैतन्य को आत्मा का स्वरूप लक्षण मान लेने पर भी समूचे शरीर में उसका अस्तित्व मानना बिल्कुल युक्तिसंगत है, अर्थात आत्मा का विस्तार हो सकता है। अन्य भारतीय दार्शनिक भी उसे मानते हैं। यहाँ इस बात का स्मरण रखना आवश्यक है कि आत्मा की व्याप्ति का अर्थ यह नहीं कि यह भी जड़ द्रव्यों की तरह किसी रिक्त स्थान को पूरा दखल कर लेता है, बल्कि इसका अर्थ तो केवल यह है कि शरीर के विभिन्न भागों के अनुभव के द्वारा यह उसमें वर्तमान रहता है। जिस स्थान में जब तक कोई जड़ द्रव्य है, तब तक वहां दूसरा कोई जड़ द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु जिस स्थान में एक आत्मा है, वहां दूसरी आत्मा का भी सन्निवेश हो सकता है। जैन दार्शनिक कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही स्थान के दो दीपक आलोकित कर सकते हैं, उसी प्रकार दो जीव भी एक ही स्थान में वर्तमान रह सकते हैं। जैन दार्शनिक चार्वाक के आत्मा संबंधी विचारों का खंडन करते हैं। प्रसिद्ध जैन दार्शनिक गुणरत्न ने चार्वाक के संशयवाद की कड़ी आलोचना की और निम्नोक्त प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का भी प्रयत्न किया। वे कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, इसी अनुभव से वे आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे हो जाता है। जब हम किसी द्रव्य के गुणों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम उस द्रव्य को ही देख रहे हैं। गुलाब के रंग को देखते हुए हम कहते हैं कि गुलाब के फूल को ही देख रहे हैं। इसी तरह आत्मा के गुणों को देखकर ही हम आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति करते हैं। सुख दुख स्मृति संकल्प संदेह ज्ञान आदि धर्मों के अनुभव होने से ही उनके धर्मों अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। आत्मा के अस्तित्व को परोक्ष ढंग से भी निम्नलिखित अनुमानों के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। शरीर को इच्छा अनुसार परिचालित किया जा सकता है, अतः इसका कोई परिचालक अवश्य होगा। वही आत्मा है। चक्षु कर्ण आदि इंद्रिय ज्ञान के लिए विभिन्न साधन हैं। उनके द्वारा ज्ञान लाभ करने के लिए किसी प्रयोजनकर्ता की आवश्यकता है, वह आत्मा है। पुनश्च शरीर की उत्पत्ति के लिए किसी निमित्त कारण की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि घट पट आदि जड़ द्रव्यों की उत्पत्ति के लिए उपादान कारण के साथ साथ निमित्त कारण की भी आवश्यकता है, वह निमित्त कारण आत्मा ही है। इस तरह कई युक्तियों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। चार्वाक तो कहते हैं कि चैतन्य की उत्पत्ति भूतों से ही होती है, किंतु हम कभी भी किसी भी स्थान में चैतन्य को भूतों से उत्पन्न होते हुए नहीं देखते हैं, और जब उसका प्रत्यक्ष होता ही नहीं तो ये कैसे मान लेते हैं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। चार्वाक यदि अनुमान प्रमाण को मानते भी तो वे यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि चैतन्य भूतों से अर्थात पुद्गल से उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर यदि चैतन्य के कारण होता तो शरीर के साथ चैतन्य का नित्य साहचर्य रहता, किंतु शरीर के रहते हुए भी निद्रा मूर्छा और मृत्यु की अवस्थाओं में चैतन्य का अभाव क्यों रहता है। दूसरी बात यह है कि दोनों में कारण कार्य संबंध रहने से एक की पुष्टि और क्षय से क्रमशः दूसरे की भी पुष्टि और क्षय होता है, किंतु इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। अतः हम देखते हैं कि शरीर और चैतन्य में कारण कार्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। चार्वाक यहाँ यह कह सकते हैं कि यद्यपि सभी जड़ द्रव्य चैतन्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर भी उनका जब विशेष प्रकार का संयोग होता है तो चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है, जड़ तत्व किसी निमित्त कारण की सहायता के बिना आप से आप किसी जीव का शरीर नहीं बन सकते हैं। वे तो उपादान मात्र हैं। उपादानों के निमित्त कारण की अपेक्षा रहती है और यह निमित्त कारण ही तो आत्मा है। मैं स्थूल हूँ, मैं क्षीण हूँ, इन युक्तियों के द्वारा चार्वाक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, लेकिन इन उक्तियों का मुख्य अर्थ यहाँ लागू नहीं है, बल्कि इनका गौण या लाक्षणिक अर्थ ही यहाँ उपयुक्त है। यह ठीक है कि आत्मा कभी कभी अपने को शरीर से भिन्न नहीं मानती, किंतु इसका कारण यह है कि शरीर के साथ इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। चार्वाक कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन तब तो शरीर आत्मा रहित है। इस युक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। जिस वस्तु का निषेध किया जाता है उसका अस्तित्व अन्यत्र किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। निषिध्यते तत् सामान्येन विद्यते एव। ऊपर की युक्तियों के अतिरिक्त हम भी कह सकते हैं कि मेरी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। यह युक्ति उसी प्रकार दुर्बोध्य है जिस प्रकार यह कहना कि मेरी माता बंध्या है।